एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम 20वीं सदी के इतिहास का पर्याय सा बन गया है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर विंस्टन चर्चिल की, और हमारा जरिया है विलियम मैनचेस्टर और पॉल रीड की लिखी वो जबरदस्त तीन खंडों वाली जीवनी द लास्ट लायन।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, मतलब ये उस पूरे युग का एक खाका खींचती है जिसमें चर्चिल ने अपना जीवन जिया।
सही कहा। तो चर्चिल थे कौन? मतलब हम सब नाम तो जानते हैं, पर उनकी शख्सियत इतनी विशाल है।
हाँ, सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, 1874-1965, ब्रिटिश राजनेता, दो बार प्रधानमंत्री रहे, एक कमाल के वक्ता, लेखक, या तक कि चित्रकार भी, सैनिक, पत्रकार, क्या नहीं थे वो।
सही में शायद 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक।
निश्चित तौर पर, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नेता के तौर पर उनकी भूमिका को तो बहुत निर्णायक माना जाता है।
बिल्कुल, लेकिन द लास्ट लायन सिर्फ उनके युद्ध के समय के नेतृत्व की कहानी नहीं है ना, ये उनके पूरे जीवन को, उनकी जटिलताओं को, उनके इरादों को समझने की एक कोशिश है।
जी, और उन्हें आखिरी शेर या द लास्ट लाइन क्यों कहा गया, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
हाँ, ये टाइटल दिलचस्प है, क्या मतलब है इसका?
देखिए, ये उस व्यक्तित्व को दिखाता है जो एक तरह से विक्टोरियन युग की सोच और मूल्यों में पला बढ़ा था, वो सम्मान, कर्तव्य, साम्राज्य वाली भावना।
अच्छा,
लेकिन जिसने 20वीं सदी की बिल्कुल नई अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया, तो वो जैसे गुजरे जमाने के आखिरी प्रतिनिधि थे जो आने वाले कल के रक्षक बन गए।
वाह, क्या खूब कहा। और उनकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है ना, नेतृत्व के बारे में, मुश्किल हालात में डटे रहने के बारे में।
बिल्कुल, और ये भी कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी इच्छा शक्ति से इतिहास का रुख मोड़ सकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं उनके इस असाधारण सफर को।
शुरुआत तो बहुत शाही अंदाज में हुई थी, ब्लेनहेम पैलेस में जन्म, एक बड़े राजनीतिक परिवार में।
जी बिल्कुल, पिता लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल जाने माने राजनेता थे, माँ जेनी जरूम एक प्रभावशाली अमेरिकी उत्तराधिकारिणी थी।
माहौल तो भव्य था,
लेकिन कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे सब कुछ उतना सुनहरा नहीं था, खासकर बचपन में।
हाँ, ये बात सही है। उनके माता पिता अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि विंस्टन को वो भावनात्मक नजदीकी और ध्यान नहीं मिल पाया जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। खासकर अपने पिता से, जिनका वो बहुत सम्मान करते थे, उन्हें हमेशा एक दूरी सी महसूस हुई। वो हमेशा उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते रहे, पर वो कबूलियत उन्हें मिली नहीं।
शायद इसी खालीपन ने, इसी जरूरत ने उन्हें हमेशा कुछ साबित करने के लिए प्रेरित किया, दुनिया की नजरों में आने के लिए।
बहुत हद तक उनमें मान्यता की एक गहरी भूख थी, और ये भी दिलचस्प है कि स्कूल में वो कोई बहुत असाधारण छात्र नहीं थे।
अच्छा
जी, हैरो स्कूल में उनका प्रदर्शन औसत ही था। इतिहास और अंग्रेजी में तो अच्छे थे, पर बाकी विषयों में, खासकर जिनमें रटना पड़ता था, उनमें पीछे रह जाते थे।
तो फिर सेना की तरफ कैसे गए?
उन्हें सेना के लिए बनी एक स्पेशल क्लास में डाल दिया गया था। एक तरह से ये एहसास कि वो अकादमिक रूप से कमतर है, इसने उनमें वो अंडरडॉग वाली भावना पैदा की कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार वो सैंडहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज में दाखिला पाने में कामयाब हुए।
लेकिन सुना है कि उनकी असली पढ़ाई, उनका बौद्धिक विकास तो बाद में हुआ, खासकर जब वो भारत में तैनात थे।
हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत में एक युवा कैवलरी अफसर के तौर पर उनके पास काफी खाली वक्त था, और उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया पढ़ने में।
क्या पढ़ा उन्होंने?
गिबन के, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, मैकैले, डार्विन, प्लेटो, मतलब पश्चिमी दर्शन और इतिहास के बड़े बड़े ग्रंथ। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, इसने उन्हें एक गहरी ऐतिहासिक समझ दी जो बाद में उनकी बहुत बड़ी ताकत बनी।
और वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, एक्शन की भी तलाश थी उन्हें।
ओहो, जबरदस्त। उनमें खतरा मोल लेने और सीधे एक्शन में कूदने के गजब की चाहत थी। वो सैनिक भी थे और युद्ध संवाददाता भी। क्यूबा गए, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर लड़े, सूडान में ओमदुरमन की मशहूर लड़ाई में हिस्सा लिया।
ओमदुरमन, जहाँ ब्रिटिश सेना का आखिरी बड़ा कैवलरी चार्ज हुआ था।
जी हाँ, उसी में। वो हर मौके की तलाश में रहते थे जहाँ वो अपनी बहादुरी दिखा सके और हाँ, खबरों में आ सके।
और इसी चक्कर में वो दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए बोर युद्ध के दौरान, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया।
बिल्कुल, ये उनके जीवन का पहला बड़ा निर्णायक मोड़ था। वो एक पत्रकार के तौर पर वहां गए थे, एक बख्तर बंद ट्रेन में सफर कर रहे थे जब बोअर सेना ने हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया।
अच्छा, फिर?
लेकिन चर्चिल कहां ज्यादा दिन कैद में रहने वाले थे। कुछ ही हफ्तों में वो एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में जेल से फरार हो गए।
फरार कैसे?
करीब 300 मील दुश्मन के इलाके से गुजरे, कभी खदानों में छिपे, कभी किसी हमदर्द की मदद ली और आखिरकार सुरक्षित पुर्तगाली इलाके तक पहुंच गए।
अरे वाह, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है।
हाँ, और इस फरारी ने उन्हें रातों रात ब्रिटेन में हीरो बना दिया। ये सिर्फ भागना नहीं था, इसमें उनकी हिम्मत, उनकी सूझबूझ और हाँ, थोड़ा अपने आप को हीरो की तरह पेश करने की कला भी शामिल थी।
तो इस घटना ने उनके लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए।
सीधे तौर पर 1900 में वो कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद चुने गए। इस एक घटना ने एक नौजवान रईसजादे को राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया।
संसद में पहुंचकर भी वो शांत बैठने वालों में से नहीं थे। पहले कंजर्वेटिव, फिर पार्टी बदल ली।
हाँ, अपने पिता की तरह उन्होंने भी पार्टी बदली। कंजर्वेटिव पार्टी से लिबरल पार्टी में चले गए, जिसे क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं।
वो महत्वाकांक्षी थे और जानते थे कि आगे कैसे बढ़ना है,
और तेजी से आगे बढ़े भी, कई महत्वपूर्ण पद संभाले।
जी, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष बने, फिर गृह सचिव, और 1911 में एक बहुत ही अहम पद, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरैलिटी, यानी नौसेना मंत्री।
उस जमाने में नौसेना तो ब्रिटेन की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक थी।
बिल्कुल, और इस भूमिका में चर्चिल ने खाजब की दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने जर्मनी से बढ़ते खतरे को महसूस कर लिया था।
हाँ, उन्होंने नौसेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया,
बहुत ज्यादा। उन्होंने जहाजों को कोयले से तेल पर लाने जैसा क्रांतिकारी फैसला किया। नौसेना के लिए हवाई ताकत, मतलब नेवल एविएशन की नींव रखी। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश नौसेना काफी हद तक तैयार थी, जिसका श्रेय चर्चिल को जाता है। लेकिन इसी पद पर रहते हुए उनकी एक बड़ी योजना बुरी तरह विफल भी हुई, गैलिपोली।
हाँ, डार्डनेल्स अभियान 1915। ये पश्चिमी मोर्चे पर जो गतिरोध बन गया था उसे तोड़ने और तुर्की को युद्ध से बाहर करने की एक बहुत साहसिक योजना थी। आइडिया चर्चिल का था,
पर हुआ गया।
योजना तो साहस थी, पर उसका अमल, उसका क्रियान्वयन बहुत खराब रहा, और नतीजा एक भयानक विफलता। हजारों की संख्या में मित्र देशों के सैनिक मारे गए,
और इसका सारा दोष चर्चिल पर आया।
हाँ, उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया, बलि का बकरा बना दिया गया, उनसे नौसेना मंत्री का पद छीन लिया गया, और वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए। ये उनके करियर का दूसरा बड़ा मोड़ था, एक ऐसा पतन जिसने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था।
लेकिन यहाँ फिर चर्चिल का वो लचीलापन देखने को मिलता है ना, उन्होंने हार नहीं मानी।
बिल्कुल नहीं, अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए उन्होंने एक हैरान करने वाला कदम उठाया। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर खुद फ्रांस में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ने चले गए।
क्या बात है,
महीनों तक खाइयों में रहे सैनिकों के साथ। इस अनुभव ने न सिर्फ उनका सम्मान लौटाया, बल्कि उन्हें युद्ध की असलियत का भी गहरा पाठ पढ़ाया। बाद में वो सरकार में लौटे, युद्ध सामग्री मंत्री बने, फिर चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री भी। लेकिन गैलिपोली का वो दाग, वो साया उन पर काफी समय तक मंडराता रहा।
और फिर आया 1930 का दशक, जिसे उनके वाइल्डनेस ईयर्स कहा जाता है, मतलब राजनीतिक वनवास का दौर। ऐसा क्यों?
कई वजहें थीं। एक तो गैलिपोली का असर था ही, दूसरा भारत की आजादी जैसे मुद्दों पर उनके जो विचार थे वो उन्हें अपनी ही पार्टी और देश की मुख्य धारा की सोच से अलग कर रहे थे। वो समय से पीछे लगते थे कई लोगों को।
वो एक तरह से अकेले पड़ गए थे।
हाँ बिल्कुल, राजनीतिक रूप से अलग थलग हो गए थे।
लेकिन इसी अकेलेपन में, इसी हाशिए से उन्होंने वो आवाज उठाई जिसे उस वक्त कोई सुनना नहीं चाहता था।
और यही उनकी वो ऐतिहासिक समझ, वो हिस्टोरिकल इमेजिनेशन फिर से सामने आई, जहां ब्रिटेन और यूरोप के ज्यादातर नेता हिटलर और नाजी जर्मनी को लेकर तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे।
अपीजमेंट।
हाँ
जी,
चर्चिल लगातार चेतावनी दे रहे थे हिटलर के असली इरादों के बारे में, जर्मनी के फिर से हथियारबंद होने के खतरे के बारे में।
लेकिन उनकी बात सुनी किसी ने
नहीं। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें युद्ध भड़काने वाला, गर्म मिजाज का कहते थे। उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई।
ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, अकेले खड़े रहना जब कोई आपकी बात ना माने।
बेहद मुश्किल, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनका मानना था कि इतिहास यही सिखाता है कि ऐसे तानाशाहों को नजरअंदाज करना खतरनाक होता है। वो हिटलर को सिर्फ एक जर्मन नेता की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के उन बड़े खलनायकों की तरह देख रहे थे जिनसे ब्रिटेन हमेशा लड़ा था।
जैसे नेपोलियन?
हाँ, जैसे नेपोलियन या लुई चौदहवें।
और फिर वक्त ने उन्हें सही साबित कर दिया। 1939 पोलैंड पर हमला और दुनिया को चर्चिल की चेतावनियां याद आईं।
या नेवी को विंस्टन इज बैक।
और कुछ ही महीनों बाद मई 1940 स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। फ्रांस हार रहा था, ब्रिटिश सेना डनकर्क में फंसी हुई थी।
हाँ, ब्रिटेन अपने इतिहास के शायद सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री चैम्बरलाइन ने इस्तीफा दे दिया और तब सबकी नजरें उसी एक आदमी पर गईं जिसने लगातार खतरे की घंटी बजाई थी।
विंस्टन चर्चिल
65 साल की उम्र में सालों के राजनीतिक वनवास के बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
ये उनके जीवन का तीसरा और शायद सबसे अहम मोड़ था। जैसे पूरी जिंदगी की तैयारी इसी एक पल के लिए हुई हो।
बिल्कुल, जैसा उन्होंने खुद बाद में लिखा भी कि उन्हें लगा जैसे वो भाग्य के साथ चल रहे हैं और उनका पूरा पिछला जीवन इसी एक पल, इसी परीक्षा के लिए तैयारी थी।
और अगले 5 साल कमाल का नेतृत्व दिया उन्होंने।
इसमें कोई शक नहीं, उनके भाषण आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं।
वी शॉल फाइट ऑन द बीचेस।
हाँ, द फाइनेस्ट आर। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जैसे जंग में भेज दिया था। शब्दों से हौसला जगाया, हार मानने से इनकार करने की एक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति पैदा की।
और सिर्फ भाषण ही नहीं, उन्होंने मित्र राष्ट्रों का गठबंधन बनाया रूजवेल्ट और स्टालिन के साथ।
जी, लंदन पर जो बमबारी हुई जिसे ब्लिट्ज कहते हैं उसका सामना किया, अटलांटिक में यू बोट के खतरे से निपटे। बहुत मुश्किल दौर था लेकिन वो डटे रहे।
लेकिन जीत के ठीक बाद 1945 में एक बड़ा झटका लगा उन्हें।
हाँ, आम चुनाव हुए और वो हार गए। ये बहुतों के लिए और शायद खुद चर्चिल के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य था।
तो युद्ध जिताने वाले हीरो को जनता ने क्यों हरा दिया?
युद्ध से थकी हुई जनता शायद अब शांति और सामाजिक सुधार चाहती थी। लेबर पार्टी ने कल्याणकारी राज्य बनाने का वादा किया जो लोगों को ज्यादा पसंद आया। चर्चिल के लिए ये अपमानजनक था पर उन्होंने इसे भी सहा।
लेकिन हार कर भी वो चुप बैठने वाले नहीं थे। विपक्ष के नेता बने और फिर वो मशहूर आयरन कॉटन भाषण दिया।
हाँ, 1946 में अमेरिका के फुल्टन में, जिसने एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी। और इसी दौरान उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर अपना वो महान ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा
जिसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
जी, 1953 में। वो 1951 में फिर से प्रधानमंत्री बने, 1955 तक रहे, फिर खराब स्वास्थ्य के कारण रिटायर हो गए।
और 1965 में उनका निधन हुआ।
हाँ, 90 साल की उम्र में। और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई, जो महारानी विक्टोरिया के बाद किसी आम नागरिक को मिला सबसे बड़ा सम्मान था।
ये तो उनकी जिंदगी का एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर था। अब अगर हम उनके मूल विचारों, उनके दर्शन की बात करें, क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी? उनकी विश्व दृष्टि क्या थी?
देखिए, चर्चिल बुनियादी तौर पर एक विक्टोरियन युग के व्यक्ति थे।
रोमांटिक साम्राज्यवादी कह सकते हैं।
सम्मान, कर्तव्य, साहस, महान लोगों की नियति में विश्वास, और हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य की श्रेष्ठता में उनकी गहरी आस्था थी।
वो इतिहास को कैसे देखते थे?
वो इतिहास को महान व्यक्तियों के कर्मों के मंच के रूप में देखते थे। मतलब इतिहास बड़े नेताओं के फैसलों से बनता है, न कि सिर्फ आर्थिक या सामाजिक ताकतों से। और इसी नजरिए से उन्होंने हिटलर को भी देखा।
जैसे?
उन्होंने हिटलर को सिर्फ एक समकालीन नेता नहीं माना, बल्कि इतिहास के पन्नों से निकले एक अत्याचारी के रूप में देखा, जैसे फिलिप द्वितीय या नेपोलियन। और उनका मानना था कि ऐसे खतरों से लड़ना ब्रिटेन का ऐतिहासिक कर्तव्य है।
लोकतंत्र के बारे में क्या विचार थे उनके?
संसदीय लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वो प्रबल समर्थक थे। इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी।
और उनकी प्रेरणा शुरू में तो पिता की स्वीकृति की बात थी, बाद में क्या?
पिता की स्वीकृति की वो अधूरी इच्छा शायद जीवन भर एक प्रेरक शक्ति बनी रही। साथ में महत्वाकांक्षा तो थी ही, और अपने भाग्य में गहरा विश्वास था कि उनका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है।
खास मकसद?
हाँ, कि उन्हें इतिहास में कोई बड़ी भूमिका निभानी है। और बाद के सालों में, खासकर 1930s के दशक के बाद, ये प्रेरणा ब्रिटेन और उनके नजरिए में पश्चिमी सभ्यता को बचाने के एक बड़े मिशन में बदल गई। उन्हें सच में लगता था कि वही अपने देश को बचा सकते हैं।
उनकी जिंदगी में असफलताएं भी बहुत आईं। उन्होंने मुश्किलों का सामना कैसे किया? क्या ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी?
हाँ, शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, असफलता से उभरने की, वापसी करने की क्षमता, रेजिलियंस। वो हार को कभी आखिरी नहीं मानते थे।
जैसे गैलीपोली के बाद?
बिल्कुल, गैलीपोली की तबाही के बाद वो टूट सकते थे, लेकिन वो खुद मोर्चे पर लड़ने चले गए। जब राजनीतिक वनवास वाइल्डनेस ईयर्स में थे तो उन्होंने उस समय का इस्तेमाल लिखने और पेंटिंग करने में किया, अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा दी।
और वो ब्लैक डॉग वाली बात, अब साथ से भी जूझते थे वो,
रहकर उस पर काबू पाया। उनका लचीलापन सिर्फ सहना नहीं था बल्कि सक्रिय रूप से वापसी करना था। हर झटके के बाद वो और मजबूती से सामने आते थे।
ये तो कमाल की बात है। तो अगर हमें उनके जीवन के तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
पहला तो निश्चित रूप से 1899 में बोअर युद्ध की कैद से वो नाटकीय फरारी।
हाँ, जिसने उन्हें हीरो बनाया।
बिल्कुल, एक गुमनाम नई जादे से वो राष्ट्रीय नायक बन गए। इसने उनकी हिम्मत, उनकी सूझबूझ और हाँ, खुद को पेश करने की कला भी दिखाई। इसी ने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी।
दूसरा,
गैलिपोली।
हाँ, मेरे ख्याल से दूसरा मोड 1915 का डार्डेनेलेस या गैलिपोली अभियान ही था। अगर बोअर फरारी ने उन्हें बनाया तो गैलिपोली ने लगभग तोड़ दिया था। ये उनके राजनीतिक पतन का क्षण था।
इसने उन्हें क्या सिखाया? इसने उन्हें बड़ी रणनीतिक योजनाओं की सीमाओं और खराब अमल के भयानक नतीजों का एक बहुत कड़वा सबक सिखाया।
लेकिन इसी अनुभव ने उनके लचीलेपन को और पक्का किया। ये दर्दनाक था पर शायद जरूरी भी।
और तीसरा सबसे अहम मोड़, मई 1940, प्रधानमंत्री बनना।
बिना शक के
मई 1940 में प्रधानमंत्री बनना, ये उनके पूरे जीवन की तैयारी, उनके अनुभव, उनकी चेतावनियों, उनके चरित्र सबका चरम बिंदु था। वो व्यक्ति और वो संकट का क्षण जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। उस विनाशकारी स्थिति में भी उनमें जो एक स्पष्टता थी, एक उद्देश्य था, वो असाधारण था। यही वो पल था जब चर्चिल असल में चर्चिल बने।
चर्चिल के इस लंबे और घटनापूर्ण जीवन से आज हम क्या सीख सकते हैं? आज के वक्त में उनकी कहानी की क्या प्रासंगिकता है?
देखिए, कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला और सबसे साफ है लचीलापन,
रेजिलियंस।
हार या सफलता अंत नहीं होती, वो बस एक घटना है। जरूरी ये है कि आप गिरकर उठते कैसे हैं।
सही।
दूसरा, तैयारी और अवसर का संगम। 1940 में वो जो नेतृत्व कर पाए वो अचानक नहीं हुआ। वो उनके जीवन भर के अध्ययन, उनके अनुभव और उनकी सोच का नतीजा था। अवसर तभी मिलता है जब आप तैयार हो।
और तीसरा शायद वो होगा, आप अपने विश्वास पर टिके रहने का साहस, भले ही आप अकेले हों, जैसे 1930 के दशक में हिटलर के खिलाफ।
बिल्कुल, अलोकप्रिय होने के डर से सच बोलने से न हिचकना। और चौथा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है शब्दों की ताकत।
हाँ, उनके भाषण।
जी, चर्चिल ने यह साबित किया कि कैसे सही समय पर कहे गए सही शब्द एक राष्ट्र का मनोबल बना सकते हैं, उसे एकजुट कर सकते हैं और इतिहास का रुख तक बदल सकते हैं। उनके भाषण सिर्फ बयानबाजी नहीं थे, वो नेतृत्व का एक शक्तिशाली हथियार थे।
आज के दौर में भी ये बातें, मुश्किलों से लड़ना, सत्ता के सामने सच बोलना, शब्दों का सही इस्तेमाल कितनी जरूरी है।
बहुत जरूरी।
लेकिन चर्चिल को सिर्फ एक नायक के रूप में देखना भी शायद अधूरा होगा, उनकी शख्सियत में जटिलताएं भी थीं।
हाँ, और ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, चर्चिल अपने समय के इंसान थे। साम्राज्य को लेकर, नस्ल को लेकर उनके जो विचार थे वो आज के हमारे मानकों पर खरे नहीं उतरते बल्कि समस्याग्रस्त लगते हैं।
हाँ, जीवनी में भी इन बातों का जिक्र है।
जी, उन्हें सिर्फ सफेद या काले में देखना सही नहीं होगा। वो एक महान नेता थे, इसमें शक नहीं, लेकिन वो इंसान भी थे अपनी तमाम खामियों और विरोधाभासों के साथ। उनकी कहानी हमें नेतृत्व, साहस, दृढ़ता के साथ साथ मानवीय अपूर्णता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है।
बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी बातचीत को तीन खास निष्कर्षों के साथ समेटते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
मेरे ख्याल से चर्चिल की वो कभी ना हार मानने वाली जो जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं उनके बचपन में मिले भावनात्मक अपनेपन की कमी से जुड़ी थी। जीवन भर उन्हें तारीफ और मान्यता की एक गहरी भूख रही जो आखिरकार उस देश को बचाने के मिशन में बदल गई जिसकी सेवा कभी उनके पिता ने की थी। ये शायद उस पिता की स्वीकृति पाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका था जो उन्हें जीते जी कभी नहीं मिली।
ये दिलचस्प है। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
चर्चिल की असली सुपर पावर अगर कहें तो उनकी ऐतिहासिक कल्पना थी। वो वर्तमान की घटनाओं को महज वर्तमान में नहीं बल्कि इतिहास के लंबे कैनवस पर रखकर देखते थे। उन्होंने हिटलर जैसे खतरों को सिर्फ तात्कालिक राजनेता नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से निकले अत्याचारियों के रूप में समझा। इतिहास की इसी गहरी समझ ने उन्हें वो स्पष्टता और दूरदृष्टि दी जो शायद उस वक्त दूसरों के पास नहीं थी, जो सिर्फ आज में जी रहे थे।
सही। और आखिर में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके जीवन पर लागू हो सकती है।
सच्ची ताकत कमजोरी की वह मौजूदगी में नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में है। चर्चिल ने व्यक्तिगत अवसाद ब्लैक डॉग, राजनीतिक बर्बादी गैलीपोली वेल्डरनेस ईयर्स और भयानक गलतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लचीलेपन से, अपनी दृढ़ता से महानता हासिल की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल पल अक्सर हमें हमारे सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत क्षणों के लिए तैयार कर रहे होते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कौसरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।